मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज मई का अंतिम दिन है, यानी कि 31 मई वर्ष 2018 है ही। तो मित्रों आज 31 मई 31 मई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक पिछले सप्ताह से यानी कि पिछले 8 एपिसोड से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात करते आ रहे हैं। मुझे लगता है ये सच ही है कि ये पहला अवसर है पिछले लगभग 4.25 साल से जब से यह डेली ऑडियो लेक्चर शुरू हुआ है कि एक ही विषय को हम इतने लंबे समय तक एक डेली ऑडियो लेक्चर के तहत अलग अलग एपिसोड के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। मित्रों ये बात मैं आपसे जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज इसके बारे में आप मुझे निश्चित रूप से फीडबैक दें, अपनी ओपिनियन दें कि अभी खासकर आज 9वां दिन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर बात करते हुए ये 9वां एपिसोड है, तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि एक ही टॉपिक को जो इतने लंबे समय तक चलाया गया इसका क्या इम्पैक्ट आप पर रहा। इससे पहले जो हम लोगों की पद्धति रही आप जानते हैं कि खासकर तो करंट अफेयर्स को लेकर के ही रही, लेकिन बीच बीच में ऐसे मौके आए हैं खासकर जब मेरी क्लासेस होती हैं 15 दिन की, उस समय हम लोग कुछ अलग तरह के टॉपिक्स को लेकर के यानी कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, स्थायी टॉपिक्स होते हैं यानी कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए नहीं होते, उन पर भी बातें की हैं, लेकिन वो अलग अलग सेक्टर की बातें थी। यानी कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स के हो गए, कुछ टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के हो गए, कुछ टॉपिक्स ज्योग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, इस तरीके से लेकर के चर्चा हुई। ये पहला अवसर है जबकि एक ही सब्जेक्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो मित्रों मैं आपसे इसके इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहता हूं और खासकर मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि क्या हम बीच बीच में इसी पद्धति को लेकर के चले कि एक ही टॉपिक या एक ही विषय पर बात करते जा रहे हैं, या फिर अगर कभी ऐसा मौका आता है कि एक सप्ताह या दो सप्ताह के लिए कुछ करंट अफेयर्स को किनारे करके और स्थायी विषयों पर ही बात करें तो उसको मिक्स्ड फॉर्मेट में लेकर के चले, प्लीज आप इसके बारे में जरूर बताएं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा और वो ये कि मैं ये बात 9वें दिन क्यों कह रहा हूं, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भाई कल फ्राइडे है और कल भी डेली ऑडियो लेक्चर आना है तो ये बात कल भी कही जा सकती थी। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि कल मैं आपसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात नहीं करने जा रहा हूं, उसका कारण है, कारण यह है कि कल 1 जून है और 1 जून के बाद सैटरडे को 2 जून है और 3 जून को रविवार है, रविवार को 3 जून है। और 3 जून क्या है आप जानते हैं, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे होंगे और उनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे बट नेचुरल है कि जिन्होंने हम लोगों की क्लास यहां अटेंड की हुई होगी, या आपने अटेंड नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, आप भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो फिर मैंने बीच में सोचा कि नहीं, अब चूंकि 1 जून वो कह लीजिए कि 3 जून से पहले का वो मेरा अंतिम डेली ऑडियो लेक्चर होगा 3 जून से पहले का, तो ज्यादा बेहतर है कि मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में कुछ आप लोगों से चर्चा कर लूं, कुछ आप लोगों को मोटिवेशन के रूप में कुछ अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा दूं, कुछ गाइडेंस दे दूं तो शायद कहीं कुछ उससे फायदा मिल जाए। तो यह निर्णय करने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, फ्राइडे को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को समाप्त कर देना चाहिए। तो मित्रों आप मानकर चलें कि आज से इस विषय को अब हम लोग बंद करेंगे, आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे ही करेंगे क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है और ढेर सारे पॉइंट्स बचे हुए भी हैं, टुकड़े बचे हुए हैं, उसका कोई अंत नहीं है। फिलहाल ये जरूर है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ये अंतिम एपिसोड है और मैं चाहूंगा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज इसके बारे में आप मुझे अपने विचारों से अवगत जरूर कराएं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपसे खासकर पंचशील पर थोड़ी सी बात करूंगा और यदि वक्त रहा तो फिर जो और दूसरे टॉपिक्स इसी विदेश नीति से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले संकेत कर चुका हूं, पूर्व की ओर देखो, गुजराल सिद्धांत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन पर भी बातें की जा सकती है, लेकिन इन सब सब पर तो बात होंगी नहीं, देखते हैं कि अब क्या होगा। मैं सच पूछे तो मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पंचशील पर बात करते हैं, लेकिन पंचशील पर बात करने से पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि मैंने अनुच्छेद 51 की बात की थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राइट। मैं एक बार उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं। मैं ये पॉइंट इसलिए बताने की सोच रहा हूं, बताने का मैंने निर्णय लिया है कि जब आप पंचशील के बिंदुओं को सुनेंगे तब आपको एक अद्भुत चीज मिलेगी, एक साम्य मिलेगा। साम्य इस तरह का कि हमारे संविधान ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जो दायित्व बेसिकली वो तो राज्यों को दिए हुए हैं, राज्यों को दिए हुए, वो किस तरह से पूरे के पूरे राष्ट्र पर लागू होते हैं। क्योंकि देखिए जो विदेश नीति है, विदेश नीति बेसिकली राष्ट्र नीति है, वो राज्यों की नीति नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उसको निभाने में राज्यों को भी अपना योगदान करना होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत ने एक नीति बनाई कि ठीक है हम इस नदी का पानी यहां देंगे, जैसे मान लीजिए कि गंगा का पानी हम आपको बांग्लादेश को देंगे। अब वो गंगा तो कई राज्यों से होकर के गुजरती है, तो बट ने चोल है कि अगर हम पानी उनको दे रहे हैं तो भारत सरकार ने तो कह दिया तो राज्यों को इसे ऑनर करना चाहिए, है ना, क्योंकि भारत सरकार ने ये नीति बनाई है। तो राज्य नहीं कह सकते कि नहीं भैया राष्ट्र ने ये नीति बनाई है, हम इसका कुछ नहीं जानते, हम तो पानी नहीं देंगे। इस रूप में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अपना महत्व है। तो अब देखिए कि कैसे संविधान में जो अपेक्षाएं की गई हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय नीति के तहत, वही पंचशील में आगे चल करके डिक्लेयर होती हैं, राइट। तो 51 अनुच्छेद 51 में जो बातें कही गई हैं उन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, और ये बहुत ही, ये कह लीजिए, परमानेंट नेचर का रिफरेंस है। इसमें बताया गया है कि भारतीय, मतलब भारत को, भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखने जो निर्देश दिए गए हैं, जो अपेक्षा की गई है, संविधान क्या निर्देश दे रहा है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखने, इसमें आप हमारे देश की जो विदेश नीति है उनको भी ढूंढिए, वो भी आपको मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखना, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधियों एवं संधि शर्तों के प्रति आदर रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कि जिसका उल्लेख आपके यूएनओ के चार्टर में भी किया गया, धारा 14 जिसकी बात हम कर चुके हैं उसमें भी ये बात कही गई, आपको ध्यान होगा, अंतर्राष्ट्रीय विधियों व संधि शर्तों के प्रति आदर रखना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों में मध्यस्थता करने का निर्देश देता है। ये हमारे अनुच्छेद 51 में हमसे एक्सपेक्टेड है, राइट। आइए अब हम पंचशील सिद्धांत को देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स नाम से बहुत स्पष्ट है कि पंचशील, पंच का मतलब है 5, शील का मतलब होता है आचरण कह लीजिए, गुण कह लीजिए, एक्ट कह लीजिए, 5 कार्य, तो बेसिकली ये वर्च्यू है, 5 वर्च्यूज, राइट। और ये जो 5 वर्च्यूज है मूलतः भारत और चीन ने मिलकर डिक्लेयर किए हैं, भारत और चीन ने मिलकर डिक्लेयर किए हैं, का मतलब है कि ये केवल भारत के लिए ही नहीं है बल्कि चीन के लिए भी है। और खासकर जिस समय ये डिक्लेयर किया गया इसकी डेट है 29 अप्रैल 1954, 29th April 1954, और याद रखिए कि इस पर जो इसका जो डिक्लेरेशन हुआ, साइन हुए हैं इस पंचशील पर, वो पेकिंग में हुए हैं, भारत में नहीं हुए, पेकिंग में, जो चीन में है। और इस पर साइन करने वाले जो दो पर्सनालिटी हैं वो हैं, एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हैं चाउ एन लाई। खासकर जब तिब्बत के मामले को लेकर के थोड़ी सी स्थिति हुई थी तो उसके उस संधि के उद्देशिका में इसे शामिल किया गया है। अब ये जो 5 शील हैं, 5 वर्च्यूज हैं, देखिए 5 वर्च्यूज क्या है, आपको बड़े सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। और अभी मैं आपको अनुच्छेद के बारे में बता चुका हूं, आप अनुच्छेद से इसका बहुत साम्य पाएंगे, अद्भुत साम्य पाएंगे। देखिए पहला है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान। देखिए जो प्रभुसत्ता है और जो क्षेत्रीय अखंडता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब तो यही है ना कि अभी किसी देश की जो भौगोलिक स्थिति है उस भौगोलिक स्थिति में कोई हस्तक्षेप न किया जाए, उसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, जिसे हम दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय एकता कहते हैं, उसका हम सम्मान करें। और प्रभुसत्ता सॉवरेंटी, ये आप जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं उसके अंतर्गत पहला बिंदु था, याद करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप एक अद्भुत समानता पाते चले जाएंगे चीजों में। यह केवल भारत की ही बात नहीं है, भारत की ही नीति की बात नहीं है, या केवल पंचशील की बात नहीं है, यह विश्व की बात है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल कि क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सेकेंड पॉइंट है गैर आक्रमण, नॉन एग्रेशन। एग्रेशन मतलब हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए कि जब हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे तो इसमें आपको दो तीन चीजें बड़ी सिंपल से दिखाई देंगी। पहला सुरक्षा, मतलब हम दूसरे देश की सुरक्षा का सम्मान करेंगे। आप आक्रमण नहीं करेंगे, इसी का एक पॉजिटिव ये है कि हम उसको सुरक्षित रखेंगे। दूसरा आपको यहां भी ये भी दिखाई देगा कि शांति, भैया शांति बनाए रखेंगे, आक्रमण करने से ही तो शांति भंग होती है, नहीं शांति बनाए रखेंगे। और इसी से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में जुड़ जाता है निशस्त्रीकरण, कि जब आप आक्रमण ही नहीं करेंगे तो फिर आपको हथियारों की क्या जरूरत है, राइट। ये सेकंड पॉइंट है गैर आक्रमण, जिसे हिंदी में कह सकते हैं आप अनाक्रमण, ये ज्यादा अच्छा शब्द है अनाक्रमण। इसके बाद तीसरा बिंदु है, थर्ड पॉइंट है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। अगर किसी देश में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये उस देश का मामला है, उसमें हम अपनी टांग नहीं फंसाएंगे, अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो। जैसे होता ये है कि जब दूसरे देश में या खासकर पड़ोसी देशों में अक्सर ये बात आती है कि वहां एक समुदाय से दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं। जैसे भारत के लोग, पता लगा कि कुछ मधेसिया जो है नेपाल में रहने वाले, वो भारत से गए हुए हैं, भारत में बहुत मुस्लिम लोग रह रहे हैं, श्रीलंका में तमिलियंस रह रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए श्रीलंका में तमिलों का कुछ मामला गड़बड़ हुआ, या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई जो तमिलों के विरोध में है। आप देखते हैं कि वहां आंदोलन भी चला, तमिलियम का आंदोलन चला। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत को श्रीलंका के इस मामले में, ये भारत के तमिल का मामला नहीं है, ये श्रीलंका के तमिल का मामला है, तो क्या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए? ठीक इसी तरह से आप देखिए कि जैसे भारत में मुस्लिम समुदाय रह रहा है, तो आप कभी कभी देखेंगे कि जब मुस्लिम समुदाय की कुछ प्रॉब्लम होगी या कोई संकट आएगा तो उस पर फिर पाकिस्तान अपना स्टेटमेंट दे देता है। अरे भैया भारत के मुसलमान हैं, भारत के वो नागरिक हैं, भारतीय संविधान है, भारत सरकार है, वो यहां रह रहे हैं, भारत सरकार देखेगी उस मामले को, लेकिन नहीं वो अपना स्टेटमेंट देंगे, तो ये हस्तक्षेप है, इसे ही कहा जाता है हस्तक्षेप। हम ऐसा नहीं करेंगे, वो उनका मामला है और वो उस मामले को निपटाएंगे। और फ्रेंड्स इसे ही हम इनडायरेक्ट में प्रभुसत्ता का सम्मान भी कहते हैं, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सीधे सीधे वहां की प्रभुसत्ता का सम्मान करना है कि भैया आप इस मामले में पूरी तरह से अथराइज्ड है, आप देखिए आपके घर की बात है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है मित्रों वो है समानता व परस्पर लाभ। समानता का मतलब है, देखिए अब दुनिया में इतने सारे देश हैं, कोई बड़ा है तो कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत धनी है तो कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत शक्तिशाली है तो कोई बहुत कमजोर है। तो ये इनके बीच समानता की बात है कि जैसे मान लीजिए कि भारत एक बड़ा राष्ट्र, एशिया के महाद्वीप में देखिए तो चीन के बाद भौगोलिक दृष्टि से दूसरा बड़ा राष्ट्र है, शक्ति की दृष्टि से भी, संपन्नता की दृष्टि से भी। तो ऐसी स्थिति में भारत ये कह रहा है कि जो छोटे राष्ट्र भी हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, जैसे मालदीव को ही देख लीजिए तो उसकी आबादी है कितनी, 2 लाख के करीब, लेकिन हम उसके साथ समानता का व्यवहार करेंगे। ये नहीं कि वो छोटा है तो हम उसकी उपेक्षा करेंगे या उसका शोषण करेंगे, उसे दबाएंगे, नहीं, हम उससे समानता का व्यवहार करेंगे और जो भी हमारी संधियां होंगी, जो भी समझौते होंगे, वो परस्पर लाभ की दृष्टि से होंगे। परस्पर लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि सिर्फ हमें ही लाभ मिलेगा, उसको भी लाभ मिलना चाहिए, जिसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं। इसके बाद पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। देखिये, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, इसके लिए एक मैं आपको एक निगेटिव वर्ड दे रहा हूं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार शुरू हुआ, जिसे आप शीत युद्ध कहते हैं, बेसिकली वो शीत युद्ध है क्या? एक दूसरे रूप में शीत युद्ध जो दो गुट हैं, इन गुट के बीच में होने वाला एक वार है, एक युद्ध है, और दोनों अपनी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, दोनों अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने गुट में ज्यादा से ज्यादा देश को शामिल कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में शक्ति का संतुलन बना होना चाहिए। वे इस मान्यता को लेकर के चल रहे हैं कि दुनिया में इससे पहले जो दो विश्व युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकेंड, वो इसलिए हुए क्योंकि शक्ति में असंतुलन पैदा हो गया था। मतलब कोई ज्यादा शक्तिशाली बन गया था तो कोई बहुत कमजोर बन गया था, तो जो शक्तिशाली है वो कमजोर को दबाएगा, तो शक्ति में असंतुलन पैदा हो गया था। तो शक्ति में संतुलन बनना चाहिए, तो शक्ति में संतुलन होने से क्या होता है, शांति बनी रहती है, कोई दूसरे पर अटैक करने की हिम्मत ही नहीं करेगा क्योंकि उसे मालूम है कि उस पर अगर हमने अटैक किया तो वो भी तो हमें, हम पर अटैक करके हमें भी बर्बाद कर देगा, तो पता लगा दोनों ही बर्बाद हो गए। तो हम इसलिए शक्ति इकट्ठी कर रहे हैं, हम इसलिए एटम बम बना रहे हैं, हम इसलिए दुनिया भर के हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं ताकि हम भी शक्तिशाली बने, दूसरा भी यही कर रहा है, तो इससे शांति बनी रहेगी। तो ये भी है शांति, ये भी शांति के लिए काम हो रहा है और अस्तित्व के लिए भी ही काम हो रहा है कि दोनों का अस्तित्व बना रहे। लेकिन शांतिपूर्ण अस्तित्व नहीं है, सह अस्तित्व नहीं है, ये तनावपूर्ण सह अस्तित्व है। अस्तित्व तो बना हुआ है लेकिन माहौल में तनाव पैदा हो गया है। भारत इसके विरोध में था, इसीलिए भारत ने निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया, उसकी वकालत की कि नहीं, ये हथियारों की दौड़ नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, ये हैं पांच पॉइंट जिन्हें हम पंचशील के नाम से जानते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हमारी विदेश नीति का है, जिसका बीच बीच में आपको आर्टिकल में उल्लेख मिल जाता होगा। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है समाप्त करने का इस आज के एपिसोड को, और मैं समाप्त करता हूं। लेकिन इससे पहले फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज 9 दिन तक लगातार आपने एक विषय पर सुना है, प्लीज इसके बारे में आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि आगे की नीति का मैं निर्धारण उसी हिसाब से कर सकूं जब भी ऐसा अवसर आएगा तब। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ ही अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।